मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है प्रोग्राम आतिफ ऑन सनराइज। सभी सुनने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मोहम्मद आतिफ की आवाज प्रोग्राम आतिफ ऑन सनराइज में एफएम सनराइज 96 साहिवाल में, जहां जहां तक और साहिवाल के गिर्द नवा में जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत खुश आमदीद इस प्रोग्राम में। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। प्रोग्राम आप सुनते हैं हर मंगल और बुध को रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक पाकिस्तान में, और इसके अलावा वाशिंगटन की घड़ियों के मुताबिक ये प्रोग्राम सुना जाता है दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। ये प्रोग्राम नशर मुकर्रर के तौर पर भी पेश किया जाता है मीडियम वेव 972 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं हर बुध और जुमेरात की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। चलते हैं साहिवाल, जहां पर हमारे साथ हैं नजमा। नजमा अस्सलाम वालेकुम।
और हमारी तरफ से भी, यानी एफएम साहिवाल के स्टूडियो की तरफ से भी, जनाब आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अमेरिका जहां जहां पर हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। और आतिफ आपको भी हम वेलकम करते हैं और प्रोग्राम जो कि आपको पता है आतिफ विद सनराइज, तमाम लिसनर्स सुन रहे हैं और सुनेंगे जी अब से लेकर ठीक 10 बजे तक। आपका और हमारा साथ रहेगा और आपका साथ भी हमें चाहिए भरपूर तरीके से, और कैसे चाहिए ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर तक।
जी हाँ, और उसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमने बात क्या करनी है। जी आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है फजूल खर्ची की, और फजूल खर्ची हर किस्म की, यानी सिर्फ जर की फजूल खर्ची है उस पर बात नहीं करेंगे, हर किस्म की फजूल खर्ची पर बात करेंगे। और आपका हमारा साथ रहेगा इस टॉपिक पर, आपसे भी बात होगी, और जैसे नजमा ने कहा जी कि आप हमें कॉल करके हमारी इस गुफ्तगु में शामिल भी हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं फजूल खर्ची के बारे में, फजूल खर्ची को तर्क करने के बारे में, इससे के बारे में, वो छोटी छोटी बातें जिनको जिनकी परवाह किए बगैर हम फजूल खर्ची करते हैं, उन पर भी बात करेंगे।
जी बिल्कुल, और फजूल खर्ची जैसे कि आतिफ ने बताया कि ना सिर्फ जर की बल्कि जुबान की भी और जमीन की भी, यानी 3 ज़े जो हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे, उन पर बातचीत करेंगे। और ये फजूल खर्ची जो है इसके कुछ फवायद भी हो सकते हैं, ये भी हम जांचने की कोशिश करेंगे कि क्या फजूल खर्ची का कोई फायदा भी है, यानी जहाँ चीजों के बहुत सारे नुकसान होते हैं आतिफ, वहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ फायदा भी होता है, और वो फायदा बिलवास्ता या बिलावास्ता किन लोगों को होता है और क्यों कर होता है, इस पर भी बात करेंगे। और जैसे आतिफ ने बताया कि आप पार्टिसिपेट कीजिएगा और आपकी शमूलियत हमारे लिए बाइस से मुसर्रत होगी
और इफ्तिखार होगी। देखिए ना, जेंडर बैलेंस करना जरूरी है नजमा। मुसर्रत और इफ्तिखार दोनों साथ होने चाहिए, जेंडर बैलेंस जरूरी है।
मुसर्रत और इफ्तिखार दोनों होंगे तो आप हमारे प्रोग्राम में मुसर्रत और इफ्तिखार के साथ तशरीफ ला सकते हैं, और उसके लिए आपको हमारे नंबर्स पर रब्ता करना होगा, रब्ता नंबर्स यानी फोन नंबर और मैसेज नंबर, तो वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम थोड़ी सी बात और करते हैं आतिफ से। जी आतिफ
जी बिल्कुल, और नजमा जैसे आपने कहा था ना कि फजूल खर्ची के कुछ फवायद भी हो सकते हैं, तो हम ये भी बात करेंगे कि वो फवायद लॉन्ग टर्म होते हैं या शॉर्ट टर्म होते हैं, और उनसे आप जो फ़ायदा आपको नज़र आ रहा होता है, क्या वो फ़ायदा होता है या वो नुकसान होता है, तो बहुत सारी बातचीत आपसे होनी है इस बारे में प्रोग्राम में आगे चलकर। लेकिन जैसा कि हम कोशिश करते हैं हर प्रोग्राम में कि आपको पहले फौरी तौर पर जो है ना एक अच्छा सा गाना सुना दिया जाए, तो आज भी एक अच्छा सा गाना आपको फ़ौरन से सुनाते हैं, जो कि है शहजाद की आवाज़ में, सोहेल शहजाद की आवाज़ है जी, नैना दे बूहे खुले खुले ही रहन दे। ये गाना सुनिए और अपना सर ना धुनिए, मैं वापस आता हूँ और नजमा भी वापस आती हैं इस गाने के बाद। हमारे साथ रहिएगा, आप सुन रहे हैं एफएम सनराइज पाकिस्तान पर आतिफ ऑन सनराइज।
नैना दे बूहे खुले खुले ही रहन दे, ओ दिया उड़ीकां दे मजे मैनू लैन दे, कदी भी नहीं किया तनू अज मैनू कैन दे हाए। ਵੀ ਨਿਕੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਚਾਂਦਰ ਸਾਂਚ ਸਾਸੀ ਉਹਦਾ ਬਸ ਦਸ ਸੋ ਚਾਂਦਰ ਹਾਏ ਸਾਂਚ ਸਾਸੀ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਤਲ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਸੜਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਠਰ ਲੈਣ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣ
سہیل شہزاد کی آواز آپ نے سنی. نظمہ, جب میں نے سہیل شہزاد کا پہلی مرتبہ گانا سنا تو وہ ایک اردو لینگویج کا گانا تھا, تو मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ था. फिर मैं सर्च करता रहा म्यूज़िक, तो फाइनली मैं इस गाने पे पहुंचा जो कि पंजाबी ज़बान में था. तो कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि उर्दू गायकी के लिए बनी होती हैं, और कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो कि रीजनल लैंग्वेजेस के लिए, जैसे पंजाबी, पश्तो, सिंधी या बलोची, कश्मीरी, बाकी भी जितनी ज़बानें हैं उनके लिए बनी होती हैं. तो आई थॉट दैट दिस सॉन्ग वॉज द बेस्ट सॉन्ग ऑफ सोहेल शहज़ाद. इन्होंने और भी बहुत सारे गाने गाए होंगे जो शायद मैंने नहीं सुने, लेकिन इनकी आवाज़ सुन के ये कहने पे मैं मजबूर हो गया कि इनकी आवाज़ यकीनन पंजाबी म्यूज़िक के लिए बनी है.
जी बिल्कुल आतिफ, पहले भी हम एक दफ़ा ये प्रोग्राम में हमने प्ले किया था, और यकीनन ये सॉन्ग बहुत बहुत, मतलब इसकी पोइट्री बहुत अच्छी है, और फिर वाकई नो डाउट लिरिक्स के साथ साथ उनकी आवाज़ जो है उस पर ये बहुत सूट कर रही है, और वाकई नो डाउट बहुत अच्छा म्यूजिक, बहुत अच्छी कंपोजिशन है, और मज़ा आता है इस गाने को सुनकर. अच्छा, आज हम बात कर रहे थे फजूल खर्ची की. आतिफ, एक जो है ना, हम आपस में जो है एक सवाल रखते हैं, यानी आपके और मेरे लिए, कि आप ये बताओ, आपके ख्याल में हमारे आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट जो है वो मोनस ज्यादा करेंगे या मुजक्कर? फजूल खर्ची की बात अगर हम करें तो, क्योंकि फजूल खर्ची को जो ज्यादातर जो थोपा जाता है वो खवातीन के सर पे थोपा जाता है कि जी खवातीन ज्यादा फजूल खर्च होती हैं, तो क्या खवातीन आज के हमारे इस टॉपिक में अपने आप को जो है वो डिफेंड करेंगी, या उसकी कोई रीजन बताएंगी, या मर्द हजरात जो है वही सिर्फ इस पे अपना जो रोना रोएंगे?
अच्छा देखिए, मेरे पास ना कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो ये साबित करते हैं कि खवातीन ज्यादा फजूल खर्च होती हैं. पहले ही बता दूं मैं आपको इससे पहले कि
बात, आई एग्री इससे मैं इत्तेफाक करती हूं, लेकिन ये है कि उसमें बात हो रही है कि पार्टिसिपेट ज्यादा कौन करेगा इस टॉपिक के हवाले से.
आप देखिए, जिनको ज्यादा आके बात करनी है, जिनको अपने आप को डिफेंड करना है, या जिनको कोई रीजन देनी है अपनी फजूल खर्ची की, उन्हीं को आके पार्टिसिपेट भी करना है. बहरहाल इसमें कोई पाबंदी या कैद तो है नहीं. मुझे लगता है कि मर्द हजरात ज्यादा कॉल करेंगे.
चलें देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है. ठीक है, और इसको बताते चलेंगे. जी कॉल करने के लिए हमारा जो राबता नंबर है वो है 0404-111-96, 0404-111-96, जिस पर आप कॉल करेंगे, और लाइव कॉल्स आपकी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे. आप अभी से हमें जो है कॉल्स कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी कॉल्स मौसूल होंगी हम उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे. और FM सनराइज 96 का जो साथ है वो आपके साथ हमारा है जी 10 बजे तक.
जी हाँ, और अब आपको बता दें जी कि कुछ फिगर्स आपको बताते हैं. तकरीबन अगर हम अमेरिका से शुरू करें तो अमेरिका में जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची की जाती है, कपड़ा लत्ता उनमें सर फहरिस्त है. यानी लोग कपड़े बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं अमेरिका में, जूते, कपड़े, एक्सेसरीज़, बाकी चीज़ें, इन पर बहुत ज़्यादा अखराजात किए जाते हैं. आप किसी भी दिन किसी भी वक्त शॉपिंग मॉल्स में चले जाएं तो आपको वहाँ लोग शॉपिंग करते मसरूफ़ दिखाई देंगे. एक अंदाज़े के मुताबिक एक एवरेज अमेरिकन जो है वो तकरीबन $150 खर्च करता है अपने खाने पर हर हफ्ते, और उसकी तनख्वाह का तकरीबन ये कह लीजिए कि तकरीबन जो आधा हिस्सा है वो खाने पर खर्च करता है. अगर उसकी तनख्वाह $300 है पर वीक, तो वो तकरीबन $150 पर वीक खाने पर खर्च करता है, उसमें तीनों टाइम का खाना शामिल है. इसी तरह 50% पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी आमदन का आधा हिस्सा खाने पर खर्च करते हैं. अगर वो लेट से 1000 जी, और ये जो एवरेज है ये महीने की है, और लेट से अगर वो 10,000 रुपए कमाते हैं तो 5,000 उसमें से खाने पर चला जाता है. वो अकेले आदमी का नहीं है, वो पूरे खानदान के खाने का है. लेकिन हमने आपको जो अमेरिकन्स की एवरेज बताई है वो पर पर्सन बताई है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है. इसी तरह ये जो क्लोदिंग है, कपड़ों की जो ख़रीदारी है, अगर हम अमेरिका की बात करें तो एक आम खातून एक तकरीबन कह लीजिए महीने में $60 अपने कपड़ों पर खर्च करती हैं, एवरेज अमेरिकन वुमन. जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जिन लोगों के पास जॉब्स हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा पैसे हर वीक खर्च करते हैं अपने कपड़ों पर. जबकि मर्द उनके मुकाबले में, अमरीकी ख़वातीन के मुकाबले में, अमरीकी मर्द पर मंथ $25 खर्च करते हैं अपने कपड़ों पर. इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के हवाले से आपको एक और दें कि तकरीबन 77%, एक मोहतात अंदाज़ा है ये, 5-7 का फ़र्क हो सकता है जो सर्वेज होते हैं उनमें, 77% अफराद पाकिस्तान में अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अखराजात करते हैं. یعنی اس میں کارڈ لوڈ کرا لیا, گانے ڈاؤن لوڈ کرا لیے, انٹرنیٹ استعمال کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. اب میں ان میں سے فضول خرچی کسی بھی چیز کو نہیں کہنا چاہتا اور نہ ہی کہوں گا, کیونکہ ظاہری بات ہے لوگوں کی ضرورتیں ہیں, وہ ان کی وجہ سے اخراجات کرتے ہیں. لیکن کیا یہ اخراجات درست ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, کیا انسان کو ہر مہینے کپڑے خریدنے چاہیے نہیں خریدنے چاہیے, کیا انسان کو ہر وقت موبائل فون استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یہ چیزیں ہمارے سننے والوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے اور انہوں نے ہی ہمیں بتانا ہے ان چیزوں کے بارے میں. اب یہ تو ہم نے وہ بڑی مٹی وہ ایسی چیزیں نا جو یہ وہ فضول خرچی ہے جو کہ نظر آتی ہے نجمہ, کچھ فضول خرچی ایسی ہے جو نظر نہیں آتی, جیسے بجلی کا زیادہ استعمال ہے, جیسے پانی کا زیادہ استعمال ہے, جیسے اور جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کا زیادہ استعمال ہے, جیسے آپ بلا وجہ مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈرائیو کرتے رہتے ہیں اور ظاہری بات ہے وہ بھی فضول خرچی ہے, اس سے بھی آپ گیس بھی برن کر رہے ہیں, گاڑی پہ مائلز بھی آ رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں. اور ایک ہے وہ جیسے آپ نے کہا جی کہ زبان کی فضول خرچی جو بعض اوقات بڑی مہنگی پڑ جاتی ہے. کسی سیانے نے کہا تھا کہ جتنا کم بولا جائے اور سوچ سمجھ کے بولا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے.
بالکل, اس کے لیے مقولہ بھی ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو. اب کچھ میرے سے جو ہیں زیادہ ذہین لوگ جو ہیں وہ ترازو لے کر پہلے باتوں کو تولتے ہیں اور پھر بولتے ہیں, اور جو جینیس لوگ ہوتے ہیں آپ جیسے وہ یقیناً پہلے سروے کرتے ہیں پھر تولتے ہیں اور پھر بولتے ہیں. بات ہو رہی تھی جیسے کہ ابھی ہم نے آپ نے بات کی امریکہ کے حوالے سے, تو ریئلی آئی واز شاکڈ اور میں سن کے یہ حیران ہوئی, مطلب ریئلی, کیونکہ مجھے جہاں تک ہم لوگ سنتے تھے یا ہم لوگوں نے سنا ہے کہ جی جو امریکنز ہیں یا جو یورپینز ہیں وہ کپڑا بہت کم خریدتے ہیں اور وہ اپنی ڈریسنگ پہ اتنا زیادہ خرچہ نہیں کرتے, وہ رہائی ایون وہ لوگ جو ہے پراپرٹیز پہ بھی اتنا نہیں کرتے. جبکہ یہاں پر تو پتہ ہے آپ کو کہ جس بندے کے پاس چار پیسے آتے ہیں یا اس کے پاس زیادہ وہ انکم آنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کی فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے کہ وہ پراپرٹی بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکسٹرا پراپرٹیز بنائے, یعنی اس کا بھی مکان خرید لو, اس کا بھی پلاٹ لے لو, یہ کر لو وہ کر لو, اپنی ضرورت سے بھی بڑھ کر یہ کہہ لیں کہ ایک فیشن بھی بن چکا ہے, ایک اسٹیٹس سمبل بھی بن چکا ہے اور ایک انویسٹمنٹ کا بھی یہ ذریعہ بن چکا ہے. تو یہ تو خیر ان کا اپنا مائنڈ ہے کہ وہ اس کو ایک انویسٹمنٹ کے طور پر وہ اسٹارٹ لیتے ہیں یا کرتے ہیں یا اپنا جو جتنا پیسہ ہے وہ اس میں لگاتے ہیں, لیکن کہیں اگر دیکھا جائے جو میں تھوڑا سا میری آبزرویشن یا کہہ لیں کہ میری میں سوچتی ہوں, تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ بہت زیادہ پراپرٹی خریدنے لگ جاتے ہیں یا اس کو جو اس طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں آپ کا جو منافع کی ایک وہ ہوتا ہے لالچ ہوتا ہے کہ جی میں نے اگر اتنے میں خریدی ہے تو میں اس کو دگنا یا تگنا بیچوں گا, تو اس میں کسی اور کا لاس بھی ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسا بندہ جو کہ اپنی کم انکم میں یا کم پیسوں میں وہ خرید سکتا تھا اس کو آپ نے اس سے جو ہے وہ محروم کر دیا. تو یہ چیزیں خیر جو ہیں وہ بھی دیکھنے والی ہوتی ہیں, اس کو بھی میں ایک طرح سے فضول خرچی کے زمرے میں لیتی ہوں, میں لیتی ہوں, لوگ پتہ نہیں اس بارے میں اپنی اپنی ہر ایک کی تھنکنگ ہے, ہر بندہ اپنے طور پر سوچتا ہے. اور زبان کی فضول خرچی کو تو یقیناً اس لیے میں نے اس کو جو ہے اس پہ شامل کیا تھا کہ بہت جگہوں پہ بہت سارے لوگ کچھ ایسی فضول خرچی کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے.
جی ہاں, یہ جو فضول خرچی ہوتی ہے اس فضول خرچی کو کرنے کے بعد جمع خرچ کا حساب کتاب بھی دینا پڑتا ہے بعض اوقات, تو بہتر ہوتا ہے کہ سوچ سمجھ کے ہی بات کی جائے. اور جیسے آپ نے کہا نجمہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, جیسے آپ نے ابھی ریئل اسٹیٹ کا ذکر کیا کہ ریئل اسٹیٹ کا جو کاروبار ہے اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس کی بہرحال ایک وجہ جو آپ نے خود بھی بتائی ہے وہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو ہے, کیونکہ یہ سیکیور انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہے, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشیٹ کرے, اور ڈپریشیشن بھی ان معاشروں میں ہوتی ہے جہاں پر ریئل اسٹیٹ کا جو ایسٹ ہے وہ کوئی بہت زیادہ سپریم ایسٹ نہیں ہوتا. جیسے ہم نے دیکھا کہ یورپ بھر میں, امریکہ میں جب یہ معاشی بحران آیا تھا تو ریئل اسٹیٹ بہت ڈکریز کر گئی تھی, بہت زیادہ قیمتیں گری تھیں ریئل اسٹیٹ کی پراپرٹیز کی. لیکن اگر ہم اس کے مقابلے میں جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے ان کو دیکھیں, پاکستان کو دیکھیں, تو جس دور میں امریکہ میں پراپرٹی کی قیمتیں گر رہی تھیں, ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں گر گئی تھیں, پاکستان میں ان دنوں ریئل اسٹیٹ کا بزنس عروج پر تھا, بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں, ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں. تو وہ ہر ملک کے مختلف ڈائنامکس ہیں. اور اسی طرح جیسے ابھی ہم نے کپڑوں پر جو اخراجات ہوتے ہیں ان کی بات کی, تو وہ بھی مختلف ہے, ہر جگہ کی اپنی علیحدہ علیحدہ ضروریات بھی ہیں. हमारे यहाँ तो एक एवरेज आदमी जो है वो हर महीने इस तरह से जाके ख़रीदारी नहीं करता, या हर महीने एक मखसूस बजट अपने कपड़ों पर, जूतों पर या एक्सेसरीज़ पर, बाकी चीज़ों पर नहीं लगाता। लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, चूँकि ये कंज्यूमर मार्केट्स हैं, बायर्स मार्केट्स हैं, तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर आकर अखराजात करते हैं। और इसी तरह से फिर ये इकॉनमी जो है वो चल रही है। अमेरिका दुनिया भर की सबसे बड़ी इकॉनमी इसीलिए है कि यहाँ पर जो बायर है उसकी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है।
बहरहाल जी,
मैंने कहा फजूल खर्ची पे वापस आते हैं। बात तो हमने फजूल खर्ची पर करनी थी, लेकिन उसमें जाहिर बात है ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं, एक दूसरे से मिली जुली हैं और इंटर रिलेटेड हैं। सॉरी, मैंने इंटीग्रेटेड कह दिया, इंटर रिलेटेड हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पर बात करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन बहरहाल फजूल खर्ची है। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर मैं आज फोकस करना चाहता हूँ वो पानी की फजूल खर्ची है। नजमा, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक पानी कम होता जा रहा है। जो पीने का पानी है, शफाफ पानी है, जिसको मीठा पानी कहा जाता है, दुनिया भर में उसकी किल्लत पैदा होती जा रही है। और अगले 10 से 15 सालों में ये किल्लत इतनी बढ़ जाएगी कि ये वाज़ेह तौर पर डेवलप्ड वर्ल्ड में भी नज़र आना शुरू हो जाएगी।
बिल्कुल, यहाँ पर मतलब अगर आप पानी की जैसे फजूल खर्ची की बात की, तो मैंने लोगों को देखा, वो समझते हैं, अगर आप आमतौर पर किसी बंदे को ये कहे ना कि वो ब्रश करते हुए जो है टूटी उसको बंद कर दे, या जो पानी है उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, तो आपको आगे से ये जवाब मिलेगा कि लो इससे क्या फर्क पड़ता है इतना सा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी मतलब बेफजूल खर्ची, पानी की फजूल खर्ची की बहुत बड़ी वजह है कि जब तक आप ब्रश कर रहे हैं तब तक पानी चल रहा है, नलका चल रहा है। और उसके अलावा नहाने के लिए, उफ आतिफ, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, यहाँ पर क्या, ये हर जगह खैर होंगे, कि जो वॉशरूम में जाते हैं या वो नहाने जाते हैं तो एक एक घंटा वो सिर्फ बाथ लेते हैं और उसमें वो पानी जो है उसका वो बिला वजह जो है इस्तेमाल करते रहते हैं, और वो भी एक फजूल खर्ची के जिम्मे में आता है। और इसके अलावा हमारी खवातीन जो हैं उनका ये आलम है कि वो जब पानी का इस्तेमाल करती हैं तो खैर से फिर ये भूल जाती हैं, वो चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो फर्श धोने की बात हो, चाहे वो पानी छिड़कने की बात हो, यानी बाहर घरों के बाहर लॉन्स में या वैसे जो पानी छिड़का जाता है, जैसे अब वेदर चेंजिंग्स है, मौसम बदल रहा है, तो गर्मियों में तो खैर पानी का इस्तेमाल इतना बेजा है कि पूछिए पूछ मत। और इसको अक्सर औकात मैं लोगों को टोकती भी हूँ इस बात पे कि ये चीज़ें जो हैं ये भी फजूल खर्ची आती है, और ना सिर्फ फजूल खर्ची है बल्कि इससे आपको खुद भी एक अनसेटिस्फेक्शन होती है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप समझें तो।
जी, जब हम पानी की बात कर रहे हैं तो मुझे अभी अभी बताया है शहजाद ने स्टूडियो के दूसरी तरफ से, बड़ी आला इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि हम बाकी दुनिया की तो बात कर ही रहे थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि डेवलप वर्ल्ड में भी पानी का जो क्राइसिस है वो बहुत जल्दी आने वाला है। वाटर सिक्योरिटी पॉलिसी पूरी दुनिया के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुकी है। तो अमेरिका के कुछ और फैक्ट्स आपको देते हैं, और अमरीकी जो है ना जी, वो तकरीबन एक साल में 1 ट्रिलियन गैलन पानी ज़ाया कर देते हैं। अब उसमें वो हर किस्म का ज़िया शामिल है, उसमें जो घर में पानी इस्तेमाल हो रहा है वो भी शामिल है, कमर्शियल लेवल पर जितना पानी इस्तेमाल हो रहा है वो भी शामिल है। तो ये जो ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज है जी, ये अब दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला बन के सामने आ सकती है। और एक तंजीम है water.org, जो लोग जानना चाहते हैं मज़ीद फैक्ट्स इस बारे में और अपने आप को पानी ज़ाया करने से रोकना चाहते हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि आप इस पर जाइए। इनकी वेबसाइट है water.org, इस पर जाके आपको पता चलेगा कि जनाब ये जो इमरजेंसी है ये कितनी बड़ी हो सकती है और कितने ज़्यादा लोगों को, कितनी दुनिया के ममालिक को इसका सामना है। कहा जाता है कि जनाब अगले 10 साल में तकरीबन ये कह लीजिए कि उम्मीद ये कह लीजिए कि एक अंदाज़ा ये है कि अगले 10 साल में तकरीबन 750 लाख अफराद नहीं 750 लाख नहीं, ये मिलियंस है, और मिलियन 10 लाख का एक होता है, तो मतलब ये करोड़ों अरबों की आप बात कर लीजिए. अब मैं मिलियंस को रुपी वो सॉरी इनका जो काउंट करने का अमेरिकी ग्राफ है उसको अगर पाकिस्तानी में चेंज करूंगा तो उसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा. बहरहाल मैं आपको ये बता देता हूँ जी कि एक मिलियन जो है वो 10 लाख का एक मिलियन होता है, और इनका इनके फैक्ट्स ये कहते हैं कि 750 मिलियन अफराद जो हैं उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है. अप्रॉक्सीमेटली 1 in 9 पीपल, हर 9 में से एक शख्स के पास पीने के साफ पानी की सहूलत मैसर नहीं है. ये हालात हैं इस वक्त, और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो फिर मजीद मसाइल पैदा हो जाएंगे. और फिर आपको पता है कि ये जो पीने का पानी है ना, अगर ये साफ ना हो तो इसकी वजह से और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, जिसमें सरे फहरिस्त है जी डायरिया, डायरिया की बीमारी एपिडेमिक फैल सकता है. इसके साथ साथ जो हेपेटाइटिस की बीमारी है वो ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है, उसमें ये वायरस आता है, जो गदला पानी होता है या पोल्यूटेड वाटर होता है उसके अंदर ये वायरस फैलता है. पोलियो का वायरस गंदे पानी में आता है जी, क्योंकि पोलियो का वायरस जो है वो फजले में खारिज होता है इंसानों के ज़रिए और फिर वो पानी में शामिल हो जाता है. और इसी तरह से और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पीने का साफ पानी ना होने की वजह से फैलती हैं उन ममालिक में जहां पीने का साफ पानी मैसर नहीं है.
और बिल्कुल, पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, और आप ये देखें कि पानी की कमी की वजह से मतलब एक इंसान जो है वो पानी अगर कहते हैं कि खाए बगैर तो वो 7 दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी पिए बगैर वो 3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकता. तो पानी एक इतनी बड़ी नेमत है कि उसकी जो है ना सिर्फ हमें उसको बचाना चाहिए, उसकी फजूल खर्ची से बचना चाहिए, बल्कि उसके लिए इकदाम भी कुछ ऐसे होने चाहिए जो कि गवर्नमेंट लेवल पे या वैसे एक, क्योंकि ये एक कुदरती नेमत है और इस नेमत को खैर अल्लाह ने जो पैदा करना है वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ बहसियत इंसान हमारे जो फ़राइज़ हैं वो हमें इस पे ज़रूर काम करना चाहिए कि हमें पानी को बचाने के लिए जो कदम हम उठा सकते हैं, जो इकदाम हम कर सकते हैं वो ज़रूर करने चाहिए. तो जैसे आपने पानी की यहाँ पर बात की, गदले पानी की, तो आतिफ यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे हम कराची की साइड से लेकर ये सारा एरिया रोड़ी वगैरह, और वहाँ आप यकीन करें कि पानी जो है वो मिनरल वाटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो कुदरती सिस्टम है पानी का वो पानी बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इस साइड पे आएँ, यानी हम अपने साहिवाल से लेकर लाहौर और आगे की तरफ जाएँ इस्लामाबाद इस एरिया का, तो पानी बहुत अच्छा है और बहुत सेहतमंद पानी है. और आगे शुमाली इलाका जात जितने भी हैं वहाँ पर तो खैर माशाल्लाह ये पानी बहुत सेहतमंद है. तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि पानी पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया जो है वहाँ पानी बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है और मीठे पानी की कसरत है. लेकिन जिस तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह हम इसका जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खुदा नखास्ता यहाँ पर भी ये चांसेस जो हैं अब पैदा होने शुरू हो गए हैं पानी की किल्लत के.
नजमा, आपने जैसे कहा ना कि यहाँ पानी की किल्लत के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी जिस तेज़ी से ग्रो कर रही है, अगर ये इसी तेज़ी से ग्रो करती रही तो पाकिस्तान में पीने के पानी की शदीद किल्लत हो जाएगी अगले 20 साल में, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रही है और हमारे पास जो वाटर रिजर्वायर्स हैं वो तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहे, और ना ही उसके लिए कोई काम सब्सटैंशियल काम अब तक किया गया है. आपने बात की पानी ज़ाया करने की, तो आपको ये बता दें जी कि पाकिस्तानी जो हैं एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन एक आम आदमी से दुनिया भर में जितनी भी तादाद में पानी ज़ाया किया जाता है, अगर एक एवरेज निकाली जाए तो पाकिस्तानी 10वें नंबर पर आते हैं पानी ज़ाया करने के मुकाबले में पूरी दुनिया में. इसी तरह एक और सर्वे ये कहता है कि पाकिस्तान में हर रोज़ 630 बच्चे गंदे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की वजह से मर जाते हैं.
बिल्कुल ऐसा ही है.
तो बहुत ही सब्सटैंशियल फिगर्स हैं जो कि पानी की जो फजूल खर्ची है या पानी का जो ज़िया है उससे मुतल्लिक हैं. और हमारे सुनने वाले जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं. वक्त है कि आपके लिए प्रोग्राम का अगला गाना चलाया जाए जी. वापस आते हैं और आपसे दोबारा इसी मौजू पर बात होगी, फजूल खर्ची पर. पानी पर बहुत बात हो गई, लेकिन बाकी जो चीज़ों में हम फजूल खर्ची बरतते हैं हैं उन पर भी बात होगी, आप हमारे साथ रहिए। ठीक 30 मिनट का आपका और हमारा साथ बाकी है। रात के 10 बजे तक आप सुनेंगे मोहम्मद आतिफ और नजमा को प्रोग्राम आतिफ ऑन सनराइज में। आपके लिए प्ले कर रहा हूँ अब्बास अली खान की आवाज, सुन रे मोरे प्यारे साजना।
उछला तो अंबर की कोली भर के चिपका, पिघला तो सूरज को चूमने को लपका।
ओहो गलती हो गई, बड़ी सख्त गलती हो गई, और गलती ये हो गई कि हमने तो चलाया है कैलाश खेर को, और कैलाश खेर का जो गाना हमने चलाया है वो था रंगीले। तो अब क्या हम रंगीले ही प्ले कर रहे हैं? नहीं, हम सुन रहे प्ले कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सुने। तो अब्बास अली खान, आई होप दिस टाइम इट्स राइट, सुन रहे मोरे प्यारे साजना।
सुन रे मोरे प्यारे साजना, सुन रे
सुन रहे मोरे प्यारे साजना, मोरा तुम बिन जिया नहीं लागे। अब्बास अली खान की आवाज़ आपने सुनी, बहुत ही आला सिंगर, बहुत ही आला आवाज़, बहुत ही आला गाना भी हमने आपके लिए प्ले किया। नजमा, ख़वातीन के खिलाफ मेरे पास कुछ और फैक्ट्स आ गए हैं।
क्या मतलब है आपका आतिफ? आप ख़वातीन
उनकी उनकी फजूल खर्ची के खिलाफ, मतलब उनकी फजूल खर्ची पर मेरे खिलाफ मजीद सबूत आ गए हैं।
अच्छा अच्छा,
और नंबर्स भी आ गए हैं।
ओहो, अल्लाह खैर। अच्छा,
हाँ जी।
वैसे आपस की बात है, ख्वातीन तो खैर फजूल खर्ची में नो डाउट के मर्दों से ज्यादा फजूल खर्च हैं, लेकिन मर्द हजरात भी कुछ मैंने ऐसे देखे हैं जो काफी फजूल खर्च हैं। असल में थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है, यानी ख्वातीन की फजूल खर्ची जो है वो बजाहरी तौर पर नजर आती है हमें, लेकिन मर्द हजरात की फजूल खर्ची जो है वो जरा कुछ और एक्टिविटीज में काफी होती है कि आप ये ना सोचे कि मर्द फजूल खर्च नहीं है।
अच्छा, नहीं नहीं, यकीनन होंगे, लेकिन मेरे पास वो जो कुछ और एक्टिविटीज हैं उनके नंबर्स नहीं है, मेरे पास तो वो एक्टिविटीज के नंबर्स हैं जो नजर आती हैं। तो ऐसे ही, ये तो खैर मैं मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, और जो नंबर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ और अपने सुनने वालों को बताने जा रहा हूँ, वो मेकअप के ऊपर जो स्पेंडिंग होती है उसके नंबर्स हैं। और हर खातून को ये हक है कि वो अपने आप को हसीन बनाने के लिए, खूबसूरत नज़र आने के लिए, दिलकश नज़र आने के लिए जो कुछ करना चाहे वो कर सकती है, और हर इंसान का ये बुनियादी हक है कि वो अपने आप को बेहतर से बेहतर पेश करने के लिए, दिलकश नज़र आने के लिए वो सब कुछ करे जो वो करना चाहता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लो जी, एक रिसर्च है नजमा, और चूंकि मैं अमेरिका से प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं अमेरिकन फिगर्स हमेशा कोट करना चाहता हूँ। जाहिर बात है पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो इतने पैसे खर्च नहीं करती होंगी मेकअप प्रोडक्ट्स पर, लेकिन जो जो वेस्ट में ख़वातीन हैं वो अमेरिका में ख़ास तौर पर ख़वातीन तकरीबन 13,000 से 15,000 डॉलर के दरमियान अपनी पूरी ज़िंदगी में मेकअप पे खर्च करती हैं। यानी 13,000 से 15,000 डॉलर का मतलब ये है कि 13,00,000 से 15,00,000 रुपए पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी ज़िंदगी भर में, पूरी ज़िंदगी में मेकअप के ऊपर खर्च करती हैं, और उसमें से तकरीबन ये कह लीजिए 3,000 के करीब डॉलर्स यानी 3,00,000 रुपए के करीब वो सिर्फ मस्कारे पर खर्च करती हैं। मस्कारा जिसको कहा जाता है ना, जो वो लगाया जाता है उस पे, जी आई लैशेज पर जो लगाया जाता है उनको दिलकश और जाजिब नज़र बनाने के लिए, तो वो इतने का तो सिर्फ मस्कारा होता है। अच्छा, एक और भी सर्वे है जो ये कहता है कि ज़्यादातर ख़वातीन एक दिन में 2 मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं, जबकि तकरीबन 40% ख़वातीन ऐसी हैं जो कि 2 से ज़्यादा यानी 3 से 4 मेकअप प्रोडक्ट्स एक दिन में इस्तेमाल करती हैं। 6% ख़वातीन ऐसी हैं जो 4 से ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स एक दिन में इस्तेमाल करती हैं। अगर मर्दों की बात की जाए तो 56% मर्द ऐसे हैं जो कि कोई मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते पूरे दिन में। बाकी मर्द जो हैं वो ऐसे हैं जो कि 1 या 2 मेकअप प्रोडक्ट्स एक दिन में इस्तेमाल करते हैं, या कॉस्मेटिक्स जिनको कहा जाता है वो इस्तेमाल करते हैं।
उसमें परफ्यूम्स तो खैर एक नॉर्मल सी चीज है जो कि हजरात ख़वातीन हजरात दोनों ही इस्तेमाल करती हैं। आदि जैसे आप मेकअप की बात की, तो मेकअप में मतलब जो बहुत ज़्यादा यूरोप में ट्रेंड है वो एक प्लास्टिक सर्जरी का भी है, यानी आपके फेस की जो आप सर्जरी करवाते हैं तो उसमें भी वो ख़वातीन जो हैं वो अपने जो हैं नकूश को दुरुस्त करने के लिए या उनमें कोई खामी जो है उसको दूर करने के लिए, जो उनको लगती है कि शायद कोई खामी है या देखने वाले जो हैं उनको बुरा लग रहा है, तो उस पर भी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैसा खर्च करती हैं। जबकि यहाँ पर पाकिस्तान में ये रुझान कम है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो है वो पावर कैपेसिटी इतनी नहीं है ख़वातीन की कि वो प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जो है बढ़े, और जो लेज़र थेरापीज़ हैं उसका काफ़ी यहाँ पर भी अब खैर ट्रेंड हो चुका है, यहाँ पर भी लेज़र थेरापीज़ काफ़ी ली जाती हैं और लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी किया जाता है फेस की ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए। तो ये भी एक वहाँ पे जो ट्रेंड है वो भी फजूल खर्ची कह लें या उसमें एक जो है अपनी इनकम का जो है बहुत सारा हिस्सा जो है वो ख़वातीन वो इस चीज़ में भी लगाती हैं।
जी हाँ बिल्कुल, और उसमें ज़्यादातर जो है वो ज़ाहरी बात है फेस लिफ्टिंग के लिए ये सारा पैसा खर्च किया जाता है, जैसे आपने भी कहा जी कि वो चेहरे के खदो खाल को बेहतर करने के लिए, और ज़्यादातर जो है वो इस वजह से भी खर्च किया जाता है कि जो ढलती उम्र के साथ चेहरा जो है वो ज़ाहरी बात है ढलती उम्र उस पर नज़र आती है, तो उसको बचाने के लिए भी स्पेंडिंग की जाती है। तकरीबन अमेरिका में अगर बात की जाए तो जो टोटल अखराजात प्लास्टिक सर्जरी पर होते हैं एक साल के दौरान वो 10 से 11 अरब डॉलर के दरमियान है जो लोग एक साल में स्पेंड करते हैं प्लास्टिक सर्जरी पर। अब उसमें बहुत सारे, जाहिरी बात है, ट्रीटमेंट्स होते हैं, हर चीज़ जो है वो सर्जरी के ज़मरे में नहीं आती, या वो उसको सर्जरी कहा नहीं जा सकता, बहुत सारी और चीज़ें, जैसे एक वो इंजेक्ट करवाई जाती है, दवा इंजेक्ट, बोटॉक्स जिसे कहते हैं, वो इंजेक्ट करवाया जाता है, उससे झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं, चेहरा जो है वो अच्छा खिला खिला फला फूला नज़र आता है, और इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें शामिल होती हैं। लोग अपनी जो डबल चिन होती है उसको ख़त्म कराने के लिए बहुत ज़्यादा लोग उस पर अखराजात करते हैं, और अमेरिका में तकरीबन हर साल कह लीजिए कि तकरीबन $40 million इस किस्म की सर्जरीज पर या इस किस्म के जो प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे डबल चिन ख़त्म कराई जाती है और उसको बेहतर किया जाता है, उन पर खर्च किए जाते हैं। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जी, आँखों के नीचे जो झुर्रियाँ आ जाती हैं या हल्के आ जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी लोग काफ़ी ज़्यादा उस पर पैसे खर्च करते हैं। तो बेतहाशा चीज़ें हैं, आई मीन हम इस बारे में बात करते रहेंगे और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जितने फिगर्स आ रहे हैं वो खवातीन के हैं, मैं क्या कर सकता हूँ।
जी नहीं नहीं बिल्कुल, आप ठीक है, हम आपसे बिल्कुल जो है डिसएग्री नहीं कर रहे, और ये बात ठीक है। लिसनर्स को बताते चले कि आप जो FM 96 साहिवाल के स्टूडियो से इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं आतिफ विद सनराइज, और इस प्रोग्राम को जो है आप अमेरिका और पाकिस्तान दोनों जगह पे सुन रहे हैं बयक वक्त, और टाइम हमारे पास जो है वो कम रह गया है। अगर आप प्रोग्राम में यकीनन पार्टिसिपेट करना चाह रहे होंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज जो है आतिफ, यहाँ पर ये होता है कि कभी हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो बाय चांस ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ जो लिसनर्स हैं वो आपस में, उनकी आपस में वो लड़ाई हो जाती है। लड़ाई कैसे होती है कि वो उधर से कॉल मिला रहा होता है, कोई उधर से मिला रहा होता है, तो सबको लाइन बिजी मिल रही होती है। तो इस चक्कर में भी बहुत सारे लिसनर्स अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जी लाइन बिजी जा रही थी। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे रब्ता नंबर 0404-104-1196 पर, लाइव कॉल्स आपकी शामिल की जाएंगी प्रोग्राम में, और उसमें आप आज हमारा जो मौजू एक गुफ्तगू है वो है फजूल खर्ची, और उसमें आप बता सकते हैं कि फजूल खर्ची क्यों होती है, अगर आप करते हैं तो उसकी वजह क्या है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है।
अच्छा नजमा, ये बताइए आपकी राय में क्या वक्त का ज़या भी फजूल खर्ची है? यू नो किलिंग टाइम, बेकार बैठे रहना, कोई काम ना करना, ऐसे बिला वजह वक्त ज़ाया करते रहना, क्या आप इसको फजूल खर्ची समझती हैं या आपके ख्याल में नहीं है फजूल खर्ची नहीं है? क्योंकि वक्त तो हमारा है ना जी, 24 घंटे हमें रोज़ाना मिलते हैं, उसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये हमारी मर्ज़ी है।
नहीं आतिफ, उसमें मैं थोड़ा सा, मेरा जो है वो कह लें कि थोड़ा सा मैं इसमें इख्तलाफ तो नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि मैं थोड़े से इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी या बताना चाहूंगी कि हम जो वक्त के ज़िया को हम कहते हैं कि जी फलां बंदा जो है वो वक्त हमेशा ज़ाया करता रहता है, या कुछ लोग जो हैं वो वक्त का ज़िया करते हैं, ऐसे ही फजूल बैठे रहते हैं, असल में उन लोगों के पास और कुछ करने को नहीं होता, इसलिए वो अपना वक्त जो है जहाँ उन्हें समझते हैं कि यहाँ हम इसको जो है बेहतर स्पेंड कर सकते हैं, किसी पार्टी में बैठकर, किसी दोस्त के साथ गपशप लगाकर, या किसी ऐसे किसी पार्क में बैठकर अकेले जो है वो सोचते रहना या कुछ करते रहना, तो ये उनकी अपनी लाइफ का एक हिस्सा होता है, क्योंकि उनके पास काम करने को कोई नहीं होता, या ये है कि वो अपने काम जो है उनको मैनेज कर लेते हैं और वो उनके पास टाइम ज़्यादा बच जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो एक टाइम में बहुत सारे, जैसे एक दफ़ा मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी ब्रारुल हक का, तो उनसे किसी ने सवाल किया, जो होस्ट थे उसने सवाल किया कि जी आप ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा आंसर दिया, एक बहुत अच्छा जवाब दिया जो कि मेरे भी दिल को लगा। उन्होंने कहा कि एक इंसान एक वक्त में 5 काम कर सकता है, यानी अपनी लाइफ में वो 5 काम बायक वक्त कर सकता है, अगर वो चाहे तो उसे मैनेज भी कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है, हर बंदे की अपनी एक वो तरीकाकार होता है, उसके अपना जो है लाइफ गुजारने का एक सिलसिला होता है, वो उसको उस हिसाब से, जो बंदा दूसरी तरफ से देख रहा होता है उसे वो लग रहा होता है कि ये वक्त ज़ाया कर रहा है, लेकिन उसको अगर पूछे तो उसके पास करने को कुछ नहीं होता, इसलिए वो वक्त को जो है वो अपने हिसाब से जो है स्पेंड कर रहा होता है।
बिल्कुल। अच्छा अब आपको एक मजे की बात बताएं, एक जो सोशल मीडिया का आजकल बहुत ट्रेंड है ना नजमा, तो हम लोग कितना वक्त देते हैं सोशल मीडिया को 24 घंटों में से जो हमारा वक्त होता है उसमें, उस पर भी बात की जाए, और ये नंबर्स वेरी करते हैं मुमालिक, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ ये नंबर्स हो सकते हैं। हम पाकिस्तान की बात इसलिए नहीं कर सकते कि इंटरनेट तक रसाई हर किसी को हासिल नहीं है, अगर रसाई हासिल है भी तो सोशल मीडिया के नंबर्स पाकिस्तान में इतने बड़े नहीं हैं कि हम उसकी एवरेज निकालें। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो जाहिरी बात है हर किसी के पास एक्सेस है, सोशल मीडिया एक एक बहुत बड़ी चीज़ है अमेरिका में, बहुत सारे काम सोशल मीडिया के ज़रिए कर लिए जाते हैं, अमेरिकन मीडिया में कैंपेन्स पूरी पूरी सोशल मीडिया पर चला दी जाती हैं, और तो और प्रेसिडेंट ओबामा नौजवानों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, यानी फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं नौजवान वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे तो सोशल मीडिया इतना बड़ा है। एक एवरेज अमेरिकन जो है ना, वो अगर हम सिर्फ फेसबुक की बात करें, ट्विटर की या गूगल प्लस की या और जो दीगर बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बात छोड़ दें और सिर्फ फेसबुक की बात करें, तो तकरीबन 40 मिनट एक एवरेज अमेरिकन फेसबुक के ऊपर अपने दिन में गुजारता है। लेकिन अर्बन एरियाज़ में ये नंबर्स एक मरतबा फिर नजमा बहुत आगे जा सकते हैं, ये 1 से 2 घंटे तक भी जा सकते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन्स के ऊपर फेसबुक दस्तयाब है, ट्विटर दस्तयाब है, यूट्यूब दस्तयाब है, बाकी इस तरह की जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो दस्तयाब हैं, और बहुत सारे लोग अपने सफ़र के दौरान फेसबुक या ट्विटर को चेक कर रहे होते हैं, वैसे जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिला तो फ़ोन खोल के बैठ गए, अच्छा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, किन्ने केड़ी तस्वीर लाई है, किन्ने केड़ी तस्वीर तक की क्या है, यू नो ये सारी चीज़ें देखते हैं लोग बैठ के बड़े आराम से फेसबुक के ऊपर स्मार्टफोन्स के ज़रिए।
अब बिल्कुल जैसे आपने एक्सेस की अगर बात किया तो नो डाउट यहाँ पर अभी उतना नहीं है जितना कि अमेरिका में आपने जिक्र किया, नो डाउट वहाँ के फिगर्स वहाँ की जो है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी जैसे आपने सदर ओबामा की बात की तो यहाँ पर भी हमारे जो साबका सदर थे परवेज मुशर्रफ, वो भी ट्विटर को जो है वो यूज़ करते हैं और ट्विटर के ज़रिए वो अपने पैगाम अक्सर जो हैं, और इसी तरह अगर हम बिलावल की बात करें तो बिलावल के पैगाम और इवन बहुत सारे हमारे यहाँ के जो पॉलिटिक्स हैं पॉलिटिशियंस हैं उनके जो मैसेजेस अब वो हैं वो ट्विटर और इस पे उसको वो यूज़ कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि चूंकि हमारे यहाँ की यंग जनरेशन जो है और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनकी एक्सेस नो डाउट तक मैं टोटल जो फिगर अपने अंदाजे के रफ आइडिया के मुताबिक बताऊंगी, तकरीबन यहाँ का जो है 40% जो है उनकी तो एक्सेस 100% है, तो वो लोग उनकी जो जितने मैसेजेस हैं या जितने पॉलिटिक्स के हवाले से वो लोग उन तक अप्रोच कर रहे हैं।
और आपको पता है रजमा, पाकिस्तान में आप के सुनने वालों को भी बता दें कि सबसे ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स आपको पता है किस शख्सियत के हैं?
जी मुझे तो बताएं, आप लोगों को बताइए।
इमरान खान के हैं जी, सबसे ज्यादा ट्विटर के फॉलोअर्स पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हैं। इमरान खान साहब के बाद जिस शख्सियत का नंबर आता है वो एक टीवी एंकर हैं, मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करता। तीसरा नंबर जो है वो एक फिल्म स्टार का आता है, उनका भी मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, लगेगा ना कि मेरा कोई जाती मामलात हैं, शायद किसी एक से दुश्मनी है, किसी एक से दोस्ती है। तो इमरान खान चूंकि एक पब्लिक फिगर हैं इसलिए उनके बारे में मैं बताना चाहता था कि इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्विटर फॉलोअर्स इमरान खान साहब के हैं, और उसकी वजह यह है कि वो यंग जनरेशन को और जो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है उसको अपील करते हैं। तो चूँकि ज़्यादातर लोग ट्विटर पर ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, तो इसलिए इमरान खान साहब की फॉलोइंग उस लिहाज से बहुत ज़्यादा है। और जैसे आपने कहा कि बाकी पॉलिटिशियंस, आपने आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया, उनके बेबी बिलावल भुट्टो साहब का नाम लिया, और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे उनकी बेटी मरियम नवाज जो हैं वो उनके हिस्से के ट्वीट्स करती हैं। नवाज शरीफ साहब शायद बहुत मसरूफ़ हैं इसलिए उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट नहीं बना रखा, लेकिन छोटे शरीफ साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट बना रखा है और वो ट्विटर पर पैगाम भेजते रहते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनका ट्विटर अकाउंट है, यानी वो तो एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जो ISPR के तर्जुमान हैं उनका। जी
आपने हमारे जो है वजीर आजम और वजीर आला साहब की बात की कि वो बहुत मसरूफ हैं, तो उनकी मसरूफियत का आलम तो ये है कि वो इतने मसरूफ हैं कि असेंबली में भी नहीं जा पाते।
बस जी क्या करें, गुरूर तो आपको पता है वो करते नहीं हैं, इसलिए इस बारे में मजीद क्या बात की जाए। बहरहाल चूंकि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद नहीं है इसलिए हम इस बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन वाकई वो इतने मसरूफ होते हैं कि असेंबली में भी नहीं जाते, सिर्फ उस दिन असेंबली में जाते हैं जिस दिन कोई लॉ पास करने के लिए उनका वहाँ होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो असेंबली में जाना पसंद नहीं करते। उनकी कोशिश होती है कि वो वोटरों के दरमियान हर वक्त अवाम के दरमियान घिरे रहें, और वो अवाम जिनके दरमियान वो घिरे रहते हैं वो हर वक्त 24 घंटे ही उनके आले दुआले होते हैं उनके महलों में।
जी बिल्कुल, टाइम हमारा बहुत कम रह गया है और आज के प्रोग्राम में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मुझे जैसे ही पता चला कि जी आज हम फजूल खर्ची पे बात करने वाले हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम ऐसी चीजों को जो है यकीनन जो है उस पर बात करना चाहिए। वैसे आपस की बात है आतिक, मैं खुद थोड़ी सी फजूल खर्च बाकी हुई हूँ और मेरे भी हाथ में कहते ना हाथ थे मोरिया ने और मेरे हाथों में भी सुराख पाए जाते हैं और पैसे टिकते नहीं है।
चलिए, बहरहाल खवातीन के हाथ ऐसे ही होने चाहिए, मतलब खवातीन जो हैं वो देखिए ना कुछ चीजें कुछ लोगों को सूट करती हैं। जैसे मर्द जो है ना उसको सूट करता है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, खातून जो भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं वो उनको सपोर्ट करे, उनको ये प्रोटेक्शन और ये सिक्योरिटी दे कि जनाब आपके हाथ का सुराख कितना ही बड़ा हो जाए कोई मसला नहीं, तुम खर्च करी जाओ इसीलिए आए जाएंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं और सुनने वालों को भी। देखिए, हम बड़ा बाज़ोकात कभी कभार ये बात करते हैं ना कि लाइन बनानी चाहिए और बड़ा वो जब मुआशरे की बात होती है तो कहते हैं जी कि वो एक लाइन में खड़े हों, अपनी बारी का इंतज़ार करें और हर चीज़ जो है उसमें वो रिदम नज़र आना चाहिए। तो वो शहज़ाद साहब ने अभी अभी मुझे बताया जी कि एक एवरेज अमेरिकन कितने घंटे शहज़ाद 92 days, नहीं नहीं वो लाइन वाला, ये 92 days हम बाद में बताएंगे, जो लाइन में खड़े होकर गुजार देता है 2 years of their life, an average American spends 2 years of their life in line, यानी वो लाइन किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो लाइन खाना लेने की हो सकती है, वो लाइन बस पर चढ़ने की हो सकती है, वो लाइन ट्रैफिक की भी हो सकती है, जो सड़क पर ट्रैफिक जाम हुआ होता है वो लाइन भी हो सकती है। तो 2 साल बेचारे ज़िंदगी के ऐसे गुजर जाते हैं। और अब एक बहुत ही मज़े का फैक्ट आपको बताते हैं, ये भी कर्टसी शहजाद साहब, इन्होंने बताया है कि एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी के 92 घंटे 92 hours ऑफ देयर लाइफ बाथरूम, नहीं नहीं 92 days ऑफ देयर लाइफ बाथरूम में गुजारते हैं। और वो लोग जिनको बाथरूम में गाना गाने का शौक होता है वो कुछ इससे ज्यादा वक्त गुजारते हैं।
और कुछ को वहां पे अखबार पढ़ने का भी काफी चस्का होता है, बाथरूम में बैठकर अखबार पढ़ना और वहां पे सिंगिंग करना। और बाथरूम सिंगर्स की तादाद तो खैर यहाँ पर काफी, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वर्ल्ड वाइड ही काफी है। और जो लोग बाथरूम सिंगिंग करते हैं असल में वो खुद को सुनाकर सजा दे रहे होते हैं कि बाथरूम में बैठना जो है वो किस कदर तकलीफ दे है, तो साथ साथ में फिर गाना, अपना गाना और उसको सुनना, ये बड़ी बहादुरी की बात है।
जी हाँ, और वैसे देखिए गाना जो खासतौर पर जो बाथरूम सिंगिंग है ना उसका मिजाज से बड़ा ताल्लुक होता है। उसका ताल्लुक इस बात से होता है कि आप उस वक्त जिस वक्त आपने वो गाना गुनगुनाया है उस वक्त आप फील कैसा कर रहे हैं। आप किसी भी उस वक्त सिचुएशन में हो सकते हैं ना, किसी भी फ्रेम ऑफ माइंड में हो सकते हैं, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश हों इसलिए आप वो गाना गा रहे हैं, हो सकता है आप दुनिया से लापरवाही का मुजाहरा करना चाहते हो कि मैं तो गाऊंगा, अच्छा है बुरा है बस मुझे जैसा गाना आता है मुझे लगता है कि मैं ये गाना गाऊंगा और आप गा लेते हैं। बाज़ औक़ात आप किसी अच्छे मूड में नहीं होते तो कोई दुखिया सा गाना निकाल के गा लेते हैं। और जो जो इस किस्म के सिंगर्स हैं हमारे मुल्क भर में उनको इस बात पे दाद देनी चाहिए कि वो लोगों के गमों का मदावा गुसल खानों में भी करते हैं। इसी तरह जैसे आपने अखबार पढ़ने की बात की, वैसे मैं उसको समझता हूँ कि वो वक्त का एक ज्यादा बेहतर इस्तेमाल है।
आप एक टाइम में आप जो है 2-3 काम कर रहे हैं और आपका वक्त जो है वो बच रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल जी आज का जो नजमा प्रोग्राम था उसमें हमने फजूल खर्ची की बात की और यकीनन उसमें कुछ सीरियस पहलू भी थे और कुछ मजाक के पहलू भी थे, जैसे बाथरूम सिंगिंग है, अखबार पढ़ना है, लाइन में खड़े होना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम कर गुजरते हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी हैं। बहरहाल इसका फ़ैसला हर इंसान के अपने हाथ में है कि वो किस चीज़ को ज़रूरी समझता है और किस चीज़ को गैर ज़रूरी समझता है। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें वेरी करती हैं हर इंसान के मामलात, उसकी ज़िंदगी, उसकी उम्र, उसके जो रोज़ो शब कैसे गुजरते हैं उसमें। लेकिन ये जी जी कहिए।
मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम किसी को इंडिकेट ना कर सकते हैं और ना ही हम किसी को जो है पाबंद कर सकते हैं। हाँ, आपका कोई भी अमल जो है आप सिर्फ इतना होना चाहिए आपको, मतलब हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे बल्कि हम खुद पर भी के लागू करना चाहेंगे और सब पर ये होना चाहिए कि आपके किसी भी अमल से वो फजूल खर्ची, चाहे आपकी जुबान की हो, चाहे आपके जो है वो शॉपिंग हो, चाहे किसी भी किस्म की फजूल खर्ची हो, उसमें सिर्फ इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि उसमें किसी दूसरे का ज्यादा लॉस तो नहीं हो रहा, मतलब किसी और को उससे नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। अगर कोई बंदा आपकी वजह से हर्ट हो रहा है तो वो एक काबिले मजम्मत बात है, बाकी खैर अपनी लाइफ है, उसको किस तरह आप मैनेज करते हैं, किस तरह गुजारते हैं, किस तरह आप उसको जो है मोतदिल करते हैं, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू।
जी बिल्कुल नजमा, और वक्त है कि तमाम सुनने वालों से भी इजाजत ली जाए, कल के प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। कल आप दोबारा ये प्रोग्राम सुन सकते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और प्रोग्राम रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पेश किया जाएगा FM 96 साहिवाल की रेडियो फ्रिक्वेंसी पर, पावर वेव्स पर, और इसके साथ साथ वॉशिंगटन की घड़ियों के मुताबिक ये प्रोग्राम नशर होगा 12 बजे से 1 बजे तक। आज के प्रोग्राम को आप कल सुबह पाकिस्तान में दोबारा सुन सकते हैं 972 मीडियम वेव पर वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात में, और कल जो प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करेंगे उसमें भी एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। जाते जाते आपके लिए एक गाना भी प्ले करना है, और इसी के साथ आपसे इजाज़त भी लेनी है, और जाते जाते आपके लिए जो गाना प्ले किए जा रहा हूँ वो है कैलाश खेर की आवाज़ रंगीले। मोहम्मद आतिफ और नजमा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।
उछला तो अंबर की कोली भर के चिपका, पिघला तो सूरज को चूमने को लपका, मेरा मन उछला तो अंबर की कोली भर के चिपका, पिघला तो सूरज को चूमने को लपका, गुना भाग जोड़ हो हर फंदे का तोड़ हो, गुना भाग जोड़ हो तो हर फंदे का तोड़ हो, भर भर घूंट होश कहता पीले, ओ रंगीले हाँ रंगीले, ओक से तो पीले जरा ओक से तो पीले, अरे हाँ रंगीले हो रंगीले, ओक से तो पीले जरा ओक से तो पीले रंगीले। करके देख मर के देख जीने का मजा, एक दो बार तो दो चार फंसा ले फंसाओ, करके देख मर के देख जीने का मजा, घोट घोट पी ले जो इश्क दा बूटा, घोट घोट पी ले जो इश्क दा बूटा, धुन रे धुन दिल की सुन क्या सच्चा झूठा, उड़ जा और चहक जरा झूम और महक जरा, सत्कर्मों के खाले फल में सीले, ओ रंगीले हाँ रंगीले,
ओक से तो पीले जरा ओक से तो पीले,
अरे हाँ रंगीले हो रंगीले,
ओक से तो पीले जरा ओक से तो पीले।
लेके चाओ भर ले दाओ यही है मौका, कर ले पार जो मझधार है तेरी नौका, लेके चाओ भर ले दाओ यही है मौका, इक्का हो या दुक्का हो तिया या चौका, बंसावर ले हुनर किसने है रोका, हवा सा नशीला बन मेघ सा रसीला बन, जुगनू जैसा जगमगा के चीले,
तो पीले जरा ओक से तो पीले,
अरे हाँ रंगीले हो रंगीले,
ओक से तो पीले जरा ओक से तो पीले
रंगीले।
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔